दिन भर रविवार 6 दिसंबर मैं हूं निखिल रंजन। चेन्नई की बारिश में बेहाल लोग ढूंढ रहे हैं राहत का सामान, रेल और विमान सेवा वापस लौटी।
ना पूरा अंदर पानी है, अंदर नहीं चलेंगे। गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया, क्या पढ़ना तरह करंट मोटर टोरला इलेन चुल।
6 दिसंबर पर अब बीजेपी को याद आने लगे राम की बजाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिल्ली में 15 दिन बिना कार चलने के लिए तैयार हैं भारत के चीफ जस्टिस भी। भारतीय दर्शन, साहित्य और भाषा का परिचय पश्चिमी जगत से कराने वाले विलियम जोन्स की कहानी फैलाओ जियारा में।
Jones quickly realizes that he's stepped into an intellectual goldmine.
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। बाढ़ और बारिश से बेहाल चेन्नई में 4 दिन के बाद हवाई और रेल सेवाएं आंशिक तौर पर शुरू कर दी गई हैं। भारी बारिश और बाढ़ का पानी भर जाने से चेन्नई हवाई अड्डा और रेल ट्रैक बुरी तरह प्रभावित हुए थे, जिससे हवाई और रेल यातायात ठप हो गया था। चेन्नई में हवाई अड्डे के निदेशक दीपक शास्त्री ने कहा कि चेन्नई में हवाई यातायात मंगलवार से पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। चेन्नई के कुछ एक इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मालकम टर्नबुल ने कहा है कि उनकी सरकार नशीले पदार्थ मेथाम्फेटामाइन नामक गैरकानूनी ड्रग क्रिस्टल के बेकाबू होते इस्तेमाल को रोकने के लिए करीब 20 करोड़ डॉलर खर्च करने जा रही है। मेथाम्फेटामाइन को आइस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस नशीली दवा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया में होता है। मालकम टर्नबुल ने कहा,
Today, too many Australians, especially young Australians,
आजकल कई ऑस्ट्रेलियाई लोग, खासतौर पर युवा, मेथाम्फेटामाइन और आइस लेकर खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कानून इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता और इसे रोकने के लिए पता लगाने, गिरफ्तार करने और कानून की प्रक्रिया को तेज कर दिया जाएगा, जिससे उन लोगों को रोका जा सके जो दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालकर फायदा उठा रहे हैं। ये थे मालकम टर्नबुल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगान तालिबान ने एक ऑडियो टेप जारी कर दावा किया है कि तालिबान नेता मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत नहीं हुई है। इस ऑडियो टेप में मुल्ला अख्तर मंसूर की पाकिस्तान में पिछले हफ्ते हिंसक संघर्ष में मौत होने वाली खबर का खंडन किया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि ऑडियो टेप में जो आवाज़ है मुल्ला अख्तर मंसूर की आवाज़ से मेल खाती है, लेकिन तालिबान के वरिष्ठ सूत्रों ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि ये मुल्ला मंसूर की आवाज़ है। मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान में नेतृत्व को लेकर मतभेद उभर आए थे। लीबिया में सत्ता के लिए संघर्ष कर रही दो सरकारों के बीच लीबिया का राजनीतिक संकट सुलझाने के लिए प्राथमिक समझौता हो गया है। ट्यूनिस में एक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संसद और जनरल नेशनल कांग्रेस के बीच समझौते पर सहमति बन गई। इस समझौते के तहत लीबिया में एकीकृत सरकार बनाई जाएगी और 2 साल में चुनाव कराए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने समझौते का स्वागत किया है। 2011 में लीबिया के शासक मुअम्मर अल गद्दाफी को सत्ता से बेदखल कर उनकी हत्या कर दी गई थी। यमन में एक कार बम धमाके में अदन शहर के गवर्नर और उनके कई अंगरक्षकों की मौत हो गई है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। IS ने यमन में और हमलों की धमकी भी दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। आज रविवार है और आप सबके साथ ही हमें भी इंतजार है फैलाओ जियारा का, जो हम सुनाएंगे आपको थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ अहम खबरों की चर्चा कर लेते हैं। चेन्नई बारिश से बेहाल है और आज भी लोग तमाम मुश्किलों से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच राहत एजेंसियों ने अपने काम में मुस्तैदी से दिखाई है और वो लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ज़रूरी सामानों की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव भी चेन्नई के लोगों का हाल जानने पहुंचे हैं और आइए सुने कि वो इस वक्त किस इलाके में हैं और वहां कैसे हालात हैं।
हम इस वक्त चेन्नई के बीचों बीच शहर में खड़े हैं। मेरी दाईं तरफ एक बहुत महंगा सा इलाका है, वहाँ पर कल रात के बाद से बिजली आ गई है। तमाम मर्सिडीज ऑडी गाड़ियां खड़ी हैं, पानियों में डूबी दिख रही है मुझे इस वक्त। लेकिन मैं इस वक्त जहां पर हूं, ये गणेशपुरम, बताया आपने,
गणेशपुरम,
ये गणेशपुरम इलाका है और यहां पर अभी भी घुटने से ज्यादा पानी भरा है, बिजली नहीं है, घरों में 4 से 5 दिन तक लोगों के चूल्हे नहीं जले हैं। आप बताइए क्या क्या दिक्कतें आ रही है अभी। आपका नाम क्या है?
हमारा नाम है प्रभु, है मेरा नाम।
हाँ प्रभु, बताइए क्या क्या दिक्कतें आ रही है, आप यही रहते हैं, कौन सा घर है आपका?
आपका हमारा घर इधर है,
ये वाला घर डूबा हुआ है पूरा,
ना पूरा अंदर पानी है, अंदर नहीं चलेंगे
तो कैसे आप अपने घर से?
घर पे घर में
टीवी है, सामान खत्म हो गया,
सामान सब आपका खत्म हो गया,
पूरा कपड़ा, कपड़ा नहीं है,
कपड़ा भी नहीं है,
कपड़ा भी नहीं है।
इस कपड़े में कितने दिन से आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ, ये पानी के पैकेट है,
पिएगा पानी नहीं है, पूरा इधर थोड़ा
3 छोटे छोटे पैकेट है पानी पीने के,
आदमी दे दिया वाटर में, इधर कुछ भी, इधर गवर्नमेंट सब वेस्ट वर्ल्ड
गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया, सरकार के पूरा इधर नहीं देखेंगे।
यहाँ पर कितने लोग रहते हैं अंदर जो है, ये बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं पानी में डूबे, इनको खाना कब से नहीं मिला है?
खाना इधर से आदमी के लोग, आदमी लोग को थोड़ा थोड़ा दिएगा और खाएगा।
अभी एक ट्रक आई थी, ये ट्रक अभी
आई
थी, खाने के पैकेट आए थे, उस खाने के पैकेट में क्या आता है,
क्या थोड़ा 2 चपाती है, 1 कुरमा है, ऐसे खाएगा, सांभर, सांभर
है, सांभर है, सांभर आता है, उससे पूरा पड़ रहा है, हो पा रहा है काम, नहीं हो रहा है,
अंदर नहीं बनेगा,
करंट नहीं,
करंट नहीं है, 4 दिन से बिजली नहीं,
वो बहुत करंट नहीं,
साफ अन्ना तरह करंट मोटर टोटला इलेन चुन।
ये क्यों, आप लोगों को पता है कि ये दिक्कत क्यों हुई है?
इधर से सरकार का इधर से नहीं देखने का,
लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो मदद कर रही है लोगों के लिए, आर्मी भी आ रही है, एनडीआरएफ की टीमें भी आ रही है, सरकार की मदद,
अपोलो हॉस्पिटल
इधर से, एक अपोलो हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, उधर उधर से पानी, पूरा पानी है, इधर से सब लोग का गाँव का पानी इधर आएंगे,
क्योंकि ये नीचे का एरिया इलाका है, इसलिए
नीचे नीचे डाउन का नीचे एरिया है।
एमपी एमएलए यहाँ के कोई आया आपसे मिलने? आया कोई नहीं आया, अभी किसी ने हाल नहीं लिया, पब्लिक हेल्प कर रहा है, मतलब पब्लिक आ रहा है मदद के लिए, किस तरह की मदद कर रहा है पब्लिक? नो गवर्नमेंट, सरकार मदद नहीं कर रही है, पब्लिक, ये बताइए कि किस तरह की मदद कर रही है जो पब्लिक आ रही है?
वो पूरा थोड़ा कंपनी इधर है ना, सब कंपनी है, थोड़ा स्पॉन्सर करेगा,
वो आ रहा है और आप लोगों को मदद दे रहा है।
वो इधर एक एक्टर है, नरेन है, वो नरेन सर का इधर पूरा थोड़ा हेल्पिंग करेगा।
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
चैतन्य बिल्डिंग में वो घर है, से आएगा थोड़ा हेल्पिंग करेगा,
वो लोग मदद करते हैं। तो स्थिति चेन्नई के बीचों बीच शहर में काफी खराब है, अभी भी 4 से 5 फुट पानी है, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, खाने को कुछ नहीं है और लोग बाग खासी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। नितिन श्रीवास्तव, BBC चेन्नई।
आपने लोगों की मुश्किल का हाल सुना नितिन श्रीवास्तव से, और इन सब के बीच राहत की बात यह है कि रेल और विमान सेवा चेन्नई में फिर से बहाल हो गई है, और विमान सेवा हालांकि आंशिक रूप से ही शुरू हो पाई है, और इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में, तब हमारे साथ नितिन भी लाइव होंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं कुछ और दूसरी खबरों का। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार की सम विषम गाड़ी चलाने की नीति की सोशल मीडिया पर तो खूब आलोचना हो रही है, उनके विरोधी भी इस नीति को अव्यवहारिक बताने से नहीं चूक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने राज्य सरकार की इस नीति का स्वागत करते हुए कहा है कि उन्हें इसका पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं स्वर्णकांता।
भारत के मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने रविवार को अपने निवास पर कुछ पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें अलग अलग दिनों पर सम विषम नंबर की गाड़ियां चलाने से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि जजों के साथ कार पुलिंग करने से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य न्यायाधीश के इस बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा,
उनका ये सपोर्ट हमारे लिए और पूरी दिल्ली सरकार के लिए और पूरे दिल्ली वासियों के लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है हम लोगों के लिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस कार पूलिंग करेंगे तो वो पूरे मतलब हजारों लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणादायक होगा।
साथ ही दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इस बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये स्वागत योग्य और जिम्मेदारी पूर्ण बयान है। दूसरी तरफ इस योजना का विरोध भी जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल कहते हैं कि दिल्ली में अभी इस तरह की चीजों को लागू करना बड़ी दूर की कौरी है। वहीं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी केजरीवाल के इस सुझाव को अव्यवहारिक बताया। उन्होंने कहा,
देखिए मुझे इस बात का अनुमान नहीं है कि अरविंद जी को ये सुझाव किसने दिया है या कहाँ से उन्होंने इसका अध्ययन किया है। कहीं दुनिया में ये लागू भी हुआ, वहाँ भी मिजरेबली फेल हुआ। हर एक सुझाव को देने से पहले, पॉलिसी के रूप में उसकी बात करने से पहले, उसका सबसे बड़ा जो व्यवहारिक पक्ष है उसको जो है अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि व्यवहारिकता के धरातल पर तो ये जो सुझाव है ये पहले दिन ही जो है क्रैश कर जाएगा।
केजरीवाल ने शनिवार को कहा था कि यातायात से जुड़ी उनकी ये नीति केवल जाँच के तौर पर लागू की जाएगी। उन्होंने कहा था कि शहर में प्रदूषण की बदतर होती हालत के चलते उनकी सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अगर इस योजना से जनता को परेशानी हुई तो इसे बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर हालत पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली में रहना ऐसा है जैसे कि लोग किसी गैस चैम्बर में रह रहे हों। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को इस नीति को लागू करने की घोषणा की थी।
रिपोर्ट सुना रही थी स्वर्णकांता। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। आज 6 दिसंबर है। बीते करीब ढाई दशकों में भारत के लिए इस तारीख का महत्व तो इसलिए भी रहा क्योंकि इसी दिन उग्र कार सेवकों ने अयोध्या में विवादित मस्जिद गिरा दी थी। इस आंदोलन के केंद्र में रही बीजेपी अब देश की सत्ता पर काबिज है और बहुत से राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस मुद्दे ने ही बीजेपी को इस स्थिति में ला खड़ा किया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भी है और पूरे देश में इसे लेकर समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता भी इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कई सालों तक बीजेपी 6 दिसंबर को राम मंदिर से जोड़कर शौर्य दिवस के रूप में मनाती रही लेकिन आज ऐसी चर्चा नहीं सुनाई पड़ी या फिर कम सुनाई पड़ी। तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी को अब कुछ नए मुद्दों ने अपनी ओर खींच लिया है? बीजेपी को अचानक अंबेडकर क्यों इतना याद आने लगे हैं? हमारे सहयोगी ने इन सब मुद्दों पर बात की वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अपूर्वानंद से। ये बातचीत सुनिए अजय शर्मा के साथ।
6 दिसंबर बाबरी मस्जिद को ढाहे जाने का दिन है और इसमें शामिल जो नेता थे उन्हें इस अपराध की सजा आज तक नहीं हो सकी, बल्कि उनमें से एक प्रधानमंत्री हुए, दूसरे उप प्रधानमंत्री हुए और तीसरे उसमें जो शामिल व्यक्ति हैं वो अब प्रधानमंत्री हैं। तो इससे यह पता चलता है कि भारत का जो मूल धर्म निरपेक्ष संरचना है वो कितनी कमजोर हो गई है कि एक बहुत बड़े आपराधिक अभियान के जो मुजरिम हैं एक प्रकार से, न सिर्फ उनको किसी तरह की सजा नहीं हो सकी बल्कि उनको देश की बागडोर सुपुर्द कर दी गई। और उनमें से एक लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि राम जन्मभूमि अभियान कोई धर्म का अभियान नहीं था, वो एक राजनीतिक अभियान था। तो यह बात बहुत स्पष्ट थी कि इरादा कोई राम मंदिर निर्माण का, कोई हिंदू धर्म हित का नहीं था। इरादा था एक विशेष राजनीतिक दल के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक बड़ी गोलबंदी करने का। और दूसरा इसका जरिया यह था कि आप सामान्य हिंदुओं में से राजनीतिक हिंदू पैदा कर सकें और वह 1992 को समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद भी लगातार चलता रहा। उसकी परिणति 2014 में देखी गई जब भारत की केंद्रीय सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर काबिज हुई।
इन्होंने अभी संविधान दिवस मनाने का एक नया शुरुआत की है, इसमें अंबेडकर के प्रतीक का इस्तेमाल करने को भी आप इसको इसी अभियान का हिस्सा मानते हैं क्या?
बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास स्वयं अपने प्रतीक नहीं है जिनका वे इस्तेमाल कर सकते, तो वे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीकों को चुन रहे हैं और उनमें उनका मुख्य उद्देश्य है गांधी और नेहरू को अपदस्थ करना। सबसे पहले वे सरदार पटेल को लाए और पटेल के बाद जो चीज उन्हें दिखलाई पड़ी वह यह कि पिछले 30 वर्षों में भारत के सामाजिक वर्गों में जो वर्ग राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय हुए हैं वे हैं पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्ग। तो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्गों को आप राजनीतिक हिंदू कैसे बना सकते हैं, यह इनकी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा रहा है।
अयोध्या विवाद जिसकी आज 23वीं बरसी है, इस अयोध्या विवाद को अब किस दिशा में ले जाना चाहती है बीजेपी? ये कहाँ इसका अंत होने वाला है?
देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने जब यह शुरू किया था तब भी उनको मालूम था कि इसका कोई अंत नहीं होगा। यही लाभकारी स्थिति है कि इसका कभी अंत हो नहीं सकता क्योंकि भारत की एक न्याय प्रक्रिया है, वह न्याय प्रक्रिया इतनी आसानी से उसको विकृत करना संभव नहीं होगा। यह मामला आप मस्जिद को ढाह भी देंगे तो भी मामला बना ही रहेगा। राम जन्मभूमि निर्माण यह एक छलावे की तरह उन्होंने हिंदू जनता के सामने रखा कि हम करने जा रहे हैं, वह कर नहीं सकते यह बात उनको पता है। आवश्यकता पड़ने पर इसके इर्द गिर्द गोलबंदी कब हो सकती है, इसकी संभावना को जिंदा रखना ही उनका उद्देश्य है। ये राम जन्मभूमि का मसला अलग अलग समय अलग अलग ढंग से पेश आया,
यानी जितना देर तक ये अदालत में रहेगा उतना ही बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा।
जी हाँ, और यह इसलिए कि बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं उन पर वे एक लगातार दबाव बनाए रखेंगे, क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा दी है, वहाँ एक अस्थायी ढांचा बना दिया है, और अब उनका कहना है कि यहाँ मंदिर तो है ही। दूसरे राजनीतिक दलों में इतना साहस नहीं है कि वो यह कह सकें कि यह गैर कानूनी तरीके से बना है, इसलिए स्वीकार ये नहीं है।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अपूर्वानंद से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी अजय शर्मा, और अब बारी है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम फैलाओ जियारा की। प्रोफेसर सुनील खिलनानी की श्रृंखला इनकार्नेशंस, जो हिंदी में फैलाओ जियारा के रूप में आपके सामने पेश की जाती है हर हफ्ते, 21वीं कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं विद्वान विलियम जोन्स की, जिन्होंने 18वीं सदी के अंत में भारतीय दर्शन, भाषा और साहित्य का परिचय पश्चिमी दुनिया से कराया। हिंदी रूपांतरण तैयार किया है मोहनलाल शर्मा ने।
On the 25th of September 1783, a frigate named Crocodile sailed up the Hooghly River.
25 सितंबर 1783 को क्रोकोडाइल नाम का एक जहाज कोलकाता पहुंचा और उसने हुगली नदी में चांदपाल घाट पर लंगर डाला। जहाज पर सवार थे 36 साल के एक वेल्श विद्वान और बैरिस्टर विलियम जोन्स। उनके साथ थी उनकी नई नवेली दुल्हन। 6 साल के भारत प्रवास के लिए वो अपने साथ दो बड़ी भेड़ों समेत सभी जरूरी साजो सामान लेकर आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में न्यायाधीश का पद और बेहद आकर्षक तनख्वाह उनका इंतजार कर रही थी। इंग्लैंड से भारत की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक लंबी सूची भी तैयार की कि भारत पहुंचकर उन्हें क्या क्या अध्ययन करना है।
हिंदुओं और मुस्लिमों के कानून, प्राचीन विश्व का इतिहास, आधुनिक राजनीति और हिंदुस्तान का भूगोल, बंगाल पर शासन करने का सबसे अच्छा तरीका, एशिया का अंकगणित, भूगोल और मिश्रित विज्ञान, भारतीयों का औषध विज्ञान, रसायन विज्ञान, शल्य चिकित्सा और शरीर विज्ञान।
विलियम जोन्स वुड सून बिकम द ग्रेटेस्ट।
जल्द ही ये युवक विलियम जोन्स अपने युग के सबसे बड़े प्राच्य विद्वान बन गए। कोलकाता में अपने अध्ययन के लिए जोन्स के पास एक और बेशकीमती चीज थी, और वो थी विविध भाषाओं पर उनकी अद्भुत पकड़। जोन्स ने अपने जीवन में कुल मिलाकर 28 भाषाएं सीखी, बस अपनी मातृभाषा वेल्श नहीं सीखी, ऐसा कहकर उनके समकालीन उन्हें चिढ़ाया करते थे। भाषा सीखने के इस कौशल को जब उन्होंने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पर आजमाया तो परिणाम आश्चर्यजनक रहा। उन्होंने न केवल भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया, बल्कि अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति खुद भारतीयों की सोच को भी प्रभावित किया। लेखक और इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल कहते हैं,
जोन्स क्विकली रियलाइजेस दैट ही स्टेप्ड इनटू एन इंटेलेक्चुअल गोल्ड माइन।
जोन्स जल्द ही समझ गए कि उनके हाथ एक बौद्धिक खजाना लग गया है। उन्होंने जाना कि संस्कृत न केवल ग्रीक और लैटिन जितनी प्राचीन है, बल्कि अब भी इसके क्लासिक साहित्य का जो विशाल संग्रह मौजूद है वो ग्रीक और लैटिन के कुल क्लासिक साहित्य से हजार गुना बड़ा है। अब तक किसी यूरोपीय विद्वान की इस पर नजर नहीं पड़ी थी, और उन्होंने देखा कि संस्कृत साहित्य में शेक्सपियर के नाटकों को टक्कर देने वाले नाटक हैं तो होमर के महाकाव्य की बराबरी करने वाले महाकाव्य भी। उनको अपने भाग्य पर भरोसा नहीं हुआ, और न ही उन्हें ये बात भरोसे के काबिल लगी कि इस खजाने में अब तक किसी और ने रुचि नहीं ली थी।
विख्यात गणितज्ञ के पिता के पुत्र जोन्स की प्रतिभा बचपन में ही पहचान ली गई थी। हॉरो स्कूल के होनहार छात्र के रूप में जोन्स ने ग्रीक और लैटिन तो सीखी ही, फ्रेंच, इटालियन और हिब्रू भी सीखी। अरेबियन नाइट्स और फारसी काव्य से लगाव के चलते उन्होंने ऑक्सफोर्ड में एक फारसी भाषी को ढूंढ निकाला और फारसी भाषा भी सीख ली। उन्होंने फारसी भाषा का व्याकरण ग्रामर ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज लिखा, कन्फ्यूशियस मंदारिन काव्य का अनुवाद किया। इन पुस्तकों के प्रकाशित होने पर इन्हें तारीफें तो बहुत मिली, लेकिन कमाई अधिक नहीं हुई, इसलिए 1774 में जोन्स ने वकालत का रुख किया। अन्य संस्कृतियों के कानूनों और प्रथाओं को समझने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें जल्दी बंगाल प्रेसिडेंसी के नव स्थापित सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का प्रस्ताव मिल गया। ये विश्व में स्थापित होने वाला पहला सुप्रीम कोर्ट था। जोन्स इस पद के लिए राजनीतिक रूप से उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने गणतंत्रवादी रुझान के कई लेख लिखे थे और लोकतांत्रिक विचारों के प्रति उनका झुकाव था। कवि तो वो थे ही, यानी तय लीक पर न चलने वाले। लेकिन उन्होंने अपने संरक्षकों को भरोसा दिलाया कि भारत में वो राजनीतिक अधिकारों या लोकतंत्र का प्रचार नहीं करेंगे। उनका मानना था कि भारतीयों पर अंग्रेजी सत्ता का ही शासन होना चाहिए, लेकिन इस शासन की बुनियाद लंदन के आदेशों पर नहीं बल्कि भारतीयों के प्राचीन कानूनों के आधार पर ही रखी जानी चाहिए।
Presiding in the new court, seeking ways to dissuade perjurers, he grew impatient and not a little.
नई अदालत में झूठी गवाही देने से लोगों को रोकने के लिए विशेष शपथों और संस्कृत नीति शास्त्रों, विधियों और कानूनी संहिताओं के अनुवाद के लिए ब्राह्मण पंडितों पर निर्भरता के कारण उनका धैर्य जवाब देने लगा था। उन्हें पंडितों की व्याख्याओं पर संशय भी होने लगा था। उन्होंने सोचा कि इस भाषा को खुद सीख लेना ही बेहतर होगा। एक गैर जात को संस्कृत सिखाने के लिए पंडित तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि उनका एक छत्र राज छिन जाएगा। लेकिन जोन्स को एक शिक्षक मिल ही गए, रामलोचन, जिन्हें 100 रुपए मासिक के शानदार वेतन पर रखा गया। ब्राह्मण परंपराओं के मुताबिक पढ़ाई के लिए एक पवित्र कमरा बनवाया गया, जिसके सफेद संगमरमर के फर्श को रोजाना गंगा जल से धोया जाता था। कुछ ही महीनों में जोन्स हिंदू देवी देवताओं की संस्कृत स्तुतियों का अनुवाद करना शुरू कर चुके थे। फिर उन्होंने महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों का अध्ययन शुरू किया। इसके साथ साथ वो हिंदू और मुस्लिम कानूनों पर भी काम कर रहे थे। उन्होंने संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों और नाटकों का अध्ययन किया। उसमें ऐतिहासिक चरित्रों का मिलान प्राचीन ग्रीक ग्रंथों में ऐतिहासिक पात्रों से किया। चूंकि ग्रीक ग्रंथों का समय ज्ञात था, तो जोन्स ने उन्हीं के आधार पर प्राचीन भारत का एक शुरुआती ऐतिहासिक कालक्रम निश्चित किया, और ये एक बहुत बड़ी खोज थी। सबसे बड़ी खोज या उनकी सबसे बड़ी स्थापना सामने आई संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने के 4 महीने बाद। उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया जो उस समय के लिहाज से क्रांतिकारी था। पश्चिम के पाठक भी इससे भौचक्के रह गए। जोन्स ने कहा,
संस्कृत भाषा चाहे जितनी भी प्राचीन हो, उसकी संरचना बेहद शानदार है। वह ग्रीक भाषा से ज्यादा संपूर्ण है, लैटिन से ज्यादा समृद्ध है और दोनों से ही ज्यादा परिष्कृत। फिर भी इसमें और ग्रीक व लैटिन भाषाओं में गहरी समानता है। इनमें इतनी समानता है कि कोई भाषा विज्ञानी तीनों की जांच करे तो उसे यकीन करना ही होगा कि इन तीनों भाषाओं का स्रोत एक ही रहा होगा।
ये एक नया विचार था कि संस्कृत और महान यूरोपीय भाषाएं एक ही अनजानी भाषा से पैदा हुई हैं। या जैसा कि उन्होंने खुद कहा, संस्कृत ग्रीक या लैटिन भाषाओं की सुंदर बहन है। वो पूर्व और पश्चिम को जोड़ रहे थे। जोन्स के जीवनी लेखक प्रोफेसर माइकल फ्रैंकलिन कहते हैं,
इफ यू कैन इमेजिन द इफेक्ट ऑफ दैट अपॉन ब्रिटेन,
आप कल्पना कर सकते हैं कि इस विचार का इंग्लैंड वासियों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। उनका मानना था कि भारतीय सेवक बनने लायक ही हैं।
जोन्स के पत्र गवाह हैं कि भारत में अध्ययन से उन्हें सच्ची खुशी मिली। वो लिखते हैं,
मैं इंग्लैंड में कभी नाखुश नहीं था। दुखी रहना मेरा स्वभाव ही नहीं है, लेकिन भारत आने के बाद से मैं जितना खुश हूं उतना कभी नहीं था।
In the grand jury room of the Supreme Court, a building which no longer exists in Calcutta.
जनवरी 1784 में कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के ग्रैंड ज्यूरी कक्ष में जोन्स ने 30 ब्रिटिश नागरिकों को इकट्ठा किया और पूर्व के अकादमिक अध्ययन के लिए एक शौकिया क्लब की स्थापना की। ये लोग विद्वान नहीं थे बल्कि व्यवहारिक कामकाजी इंसान थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी लंदन की रॉयल सोसाइटी की तर्ज पर बनाई जानी थी। इसके लेखों में जोन्स का आशावाद और महत्वाकांक्षाएं साफ नजर आती हैं।
Yeah, here we are. The manuscript of the Proceedings of the Asiatic Society, which
ये एशियाटिक सोसाइटी की कार्यवाहियों की पांडुलिपि है। सोसाइटी की पहली बैठक 15 जनवरी 1784 को कोलकाता में हुई। 300 ब्रिटिश रेजिडेंट्स शौकिया अध्येता थे। इस पांडुलिपि का शीर्षक है एशिया का नागरिक और प्राकृतिक इतिहास। इसकी प्राचीनता कला, विज्ञान और साहित्य की खोज के लिए एक सोसाइटी की स्थापना के संबंध में चर्चा। इसकी शुरुआती पंक्तियां थीं,
जब मैं पिछले साल अगस्त में जहाज पर सवार इस देश की तरफ आ रहा था तो एक शाम मैंने गौर किया कि भारत हमारे सामने है तो फारस हमारे बाईं ओर, जबकि अरब से आने वाला हवा का झोंका हमें पीछे से सहला रहा है।
अलग अलग सभ्यताओं, फारसी, अरबी और संस्कृत की धाराओं के बीच होने की भावना ने उन्हें इतना उत्साहित किया था कि उन्होंने अपने जीवन के अगले कई वर्ष भारत में अध्ययन में लगा दिए। भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से सोसाइटी का अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया गया। उन्होंने भारत संबंधी अध्ययन के लिए काफी काम किया था, लेकिन हेस्टिंग्स ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उनके स्थान पर जोन्स अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लेकिन उस समय की एशियाटिक सोसाइटी आज जैसी नहीं थी और न ही जोन्स के साथी सदस्य बहुत विद्वान थे।
The focus was on the ancient and courtly languages, Persian and Sanskrit.
सोसाइटी का पूरा ध्यान प्राचीन और दरबारी भाषा यानी संस्कृत और फारसी के अध्ययन पर था, लेकिन गली मोहल्लों में बोली जाने वाली आम जन की भाषा की अनदेखी की गई। शुरुआत में सोसाइटी की रुचि प्राचीन इतिहास, पुरालेख, भाषा विज्ञान, खगोल विज्ञान, संगीत, शरीर विज्ञान और पुरातत्व में थी। जोन्स सोसाइटी में पढ़े लिखे भारतीयों को भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। अगले 50 वर्ष तक किसी भारतीय को सोसाइटी में शामिल नहीं किया गया। सोसाइटी के सदस्य जीते जागते भारतीय वर्तमान से कहीं अधिक पुस्तकों में वर्णित उसके अतीत के प्रशंसक थे। इस मामले में जोन्स भी अपवाद नहीं थे। सत्रह सौ नवासी में जोन्स ने प्राचीन संस्कृत साहित्य की अनुपम कृति कालिदास के नाटक शकुंतला का अनुवाद किया। जोन्स ने लिखा,
शकुंतला शेक्सपियर के नाटकों से इतना मिलता जुलता है कि मुझे लगता है कि हमारे महान नाटककार कवि शेक्सपियर ने कालिदास की रचनाएं जरूर पढ़ी होंगी।
शकुंतला से पूरे यूरोप में सनसनी फैल गई। बड़े बड़े विद्वान भारतीय ज्ञान के मुरीद हो गए। जर्मन कवि और दार्शनिक सीगल ने लिखा, संपूर्ण ग्रंथ गहरी मधुर भावना से ओतप्रोत है, हर जगह माधुर्य और सौंदर्य मौजूद है। 5 वर्ष बाद जोन्स ने हिंदू कानूनों का अनुवाद कर एक विशाल संग्रह प्रकाशित करवाया, जो कि बाद में भारतीय न्याय शास्त्र का आधार भी बना। लेकिन ये परियोजना और भारत प्रवास उनके स्वास्थ्य पर बहुत भारी पड़ा। यहाँ के मौसम से परेशान होकर उनकी पत्नी एक वर्ष पहले ही इंग्लैंड जा चुकी थी। जोन्स भी अब स्वदेश वापसी की तैयारी में थे, लेकिन इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। डेलरिम्पल कहते हैं,
जोन्स is a catalyst. He uses his authority, his charisma.
जोन्स एक उत्प्रेरक थे। उन्होंने अपनी सत्ता और अपने करिश्माई व्यक्तित्व से कई अन्य लोगों को प्रेरित किया और ये लगभग 20 साल तक चला।
पश्चिमी देशों में संस्कृत और प्राचीन साहित्य का जादू जल्द ही उतर गया। 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेज शकुंतला जैसे आख्यानों को अनैतिक और अपवित्र मानने लगे थे। मिल्टन और पोप के साहित्य को तरजीह देने के लिए उसे स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। लेकिन भारत में जोन्स की विरासत खूब हिंदू गौरव की प्रेरणा बनी। इतिहास में ऐसे भी कई बुद्धिजीवी हुए जिन्होंने किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि शौक और रुचि के लिए पूर्वी समाजों और यहाँ की संस्कृतियों का अध्ययन किया। सर विलियम ऐसे ही, यानी सकारात्मक अर्थों में प्राच्य शास्त्री थे। एक ऐसे इंसान जो भारत आए, पूरी विनम्रता से यहाँ की संस्कृति का अध्ययन किया और इसकी समृद्ध विरासत से पहचान कर पश्चिम की आंखें खोल दी। विडंबना यह है कि उन्होंने अपने प्रयासों से पूर्व को भी जगा दिया।
फैलाओ जियारा का ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। और अब सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों की थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बैठक हुई है। 4 महीने पहले यह बैठक रद्द कर दी गई थी। दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों ने कहा कि बातचीत सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण थी और खुले दिल से की गई। बाढ़ और बारिश से बेहाल चेन्नई में 4 दिन के बाद हवाई और रेल सेवाएं आंशिक तौर पर शुरू कर दी गई हैं। अफगान तालिबान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि तालिबान नेता मुल्ला अख्तर मंसूर की मौत नहीं हुई है। लीबिया में सत्ता के लिए संघर्ष कर रही 2 सरकारों के बीच लीबिया का राजनीतिक संकट सुलझाने के लिए प्राथमिक समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत लीबिया में एकीकृत सरकार बनाई जाएगी और 2 साल में चुनाव कराए जाएंगे। पेरिस में नवंबर में हुए हमले के बाद फ्रांस में पहली बार स्थानीय चुनाव कराए जा रहे हैं। पेरिस हमलों में 130 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरता कांडपाल। आपसे अगली मुलाकात होगी डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में। दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे हैं अजीत सारथी। सभी साथियों के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।